ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शंकरं सुखदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन तदीयतस्थ भद्राणी विधनोति सुहृत्सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 41 मेरे पीछे द्वारा ये श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्सांकेन सत्कृतः आमन्त्रितं परिक्रम्य सिंहस्वालयं ययो। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार भगवता भगवान द्वारा राजन हे राजा श्री वत्स अंगेना अपने वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले सत्कृत अत्यंत प्रशंसित होकर आमंत्रय अनुमति लेकर तम उसको परिक्रम्य परिक्रमा करके सगण अपने गणों समेत स्व आलयम अपने धाम को ययो वापस चले गए। धन्यवाद पढ़ता हूं श्री बहुपाद द्वारा श्री बहुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिवजी ने उनकी परिक्रमा की फिर उनकी अनुमति लेकर शिवजी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट गए। तात्पर्य पढ़ता हूं ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब शिव जी भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने उठकर उन्हें गले लगा लिया, इसीलिए यहां पर श्री वत्सांकेन शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री वत्स चिन्ह भगवान विष्णु के वक्षस्थल को सुशोभित करता है, अतः जब शिव जी ने भगवान विष्णु की परिक्रमा की और उन्होंने उनका आलिंगन किया तो श्री वत्स चिन्ह शिव जी की छाती को छू गया। ओम अज्ञातवलंधस्य ज्ञानवंशज चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदायम ददाति स्वपदांकितं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमल श्री गुरु वैष्णवाश्च श्री रूपं साधुजातं सैकं ब्रह्मानं सजीवं साधवैतं साधुभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगं जयता श्री विशाखांगताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भगवद्भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
नमो विष्णु पराय कृष्ण विष्णाय हरे
श्री हरे भक्ति वेदांत स्वामी की नाम है नमस्ते सरस्वती देवी
हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान इस प्रकार प्रशंसित होकर शिव जी ने उनकी परिक्रमा की और उनकी अनुमति लेकर शिव जी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश को लौट गए। भगवान द्वारा प्रशंसित होकर मतलब यहां जो है बात जो निकल के आ रही है क्या है कि भगवान प्रशंसा कर रहे हैं तारीफ कर रहे हैं किसकी तारीफ कर रहे हैं कौन है शिव जी शिवजी कौन है परम वैष्णव वैष्णव नाम यथा वैष्णव कौन होता नंबर एक जो विष्णु को वर्षित करता दूसरा वैष्णव की और परिभाषा क्या है तो एक परिभाषा एक मीनिंग हो गया वैष्णव का अर्थ है जो विष्णु की वर्षित करता और जो भगवान का हमेशा चिंतन करता है और जो सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है वैष्णव वो है जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है शरणागति है कंफ्यूजन नहीं है किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है विनीत है विनम्र है विनयशील है अब उस वैष्णव की यहां चर्चा आ रही है कि वैष्णव भगवान की परिक्रमा करना है आप वो करते हैं कि नहीं करते हैं परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं नहीं करते? कितनी बार करते हैं? रेकमेंडेशन कितनी बार परिक्रमा करनी है? फोर टाइम्स, चार बार। थोड़ी थोड़ी कहीं पर चेंजेस है कि जैसे किसी किसी मंदिर में परिक्रमा करने का साधन नहीं है, एग्रीड, परंतु मुख्यतः आप जितने भी मंदिर जाएंगे वहां पर परिक्रमा करने का साधन होता है। अब भगवान जो है वो वैष्णव के हृदय में विराजते हैं। विराजते हैं कि नहीं विराजते? भक्त बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? कितने लोग मानते हैं कि भगवान बड़े हैं और कितने लोग मानते हैं कि भक्त बड़े हैं? क्यों बड़े हैं भक्त? भगवान कारण बताओ, कारण रीजन। भगवान भक्त के अधीन है। कैसे अधीन है? अभी तो बताया मैंने, इतनी जल्दी सुन के भूल जाता है, फिर सुनाता हूं, कहानी सुनाता हूं, कहानी से बात ज्यादा समझ में आती, एकदम यहां बैठ जाती। एक समय की बात है कि नारद जी जो है वो पृथ्वी पर भ्रमण करके वापस पहुंचे विष्णु लोक अर्थात क्षीर सागर। और विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, शेषनाग की शैया है। तो भगवान ने नारद जी से पूछा, नारद जी तुम पृथ्वी पर भ्रमण करके आए हो, सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बृहद कौन है, कौन है सबसे बड़ा, इसको जरा मुझे समझाओ। वहां पृथ्वी भी है, जल भी है, पेड़ पौधे भी हैं, सब सृष्टि है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सभी का तुमने जो है दर्शन किए हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, बिगेस्ट ऑफ ऑल? नारद जी कहते हैं कि सब पृथ्वी सबसे बड़ी है, ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे बड़ी, असंख्य मकान है, असंख्य जीव उसमें रह रहे हैं, असंख्य। भगवान ने कहा कि जिसको तुम पृथ्वी कहते हो उसका दो तिहाई तो जल है, जल को अलग तो नहीं कहते ना, पृथ्वी कहते हैं ना, पृथ्वी जल उसका पार्ट है, ऐसी शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। अब दो तिहाई जल है और एक तिहाई पृथ्वी है, जनरली एक तिहाई पृथ्वी है और दो तिहाई जल है, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ? तो नारद जी कंफ्यूज्ड, बोले साहब जल बड़ा हो गया क्योंकि ज्यादा है, तीन में से दो हिस्से जल है और एक हिस्से पृथ्वी है, तो ऑटोमेटिकली जल जो है वो बड़ा हो गया। ये सुनता है क्या? अब भगवान ने कहा कि अब जब जल को सबसे बड़ा कह रहे हो, तो एक कथा आती है कि अगस्त्य मुनि ने सारे जल को पी लिया था, सोख लिया था। तो जिन्होंने सारे जल को समाप्त कर दिया, सारे जल को पी लिया, वो मुनि बड़े हुए कि समुद्र बड़ा हुआ, जल बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ? नारद जी फिर कंफ्यूज्ड, बोले प्रभु मुनि बड़े हुए, कौन बड़ा है? पृथ्वी से बड़ा जल, जल से बड़े मुनि। बोले जब मुनि जो है जब उनका तिरोभाव हो गया तो आकाश में एक छोटे से तारे के रूप में विराजमान है, तारे के रूप में, आकाश में एक छोटे से स्टार सप्तऋषि तारे के रूप में कहीं विराजमान। तो अब बताओ आकाश बड़ा हुआ कि मुनि बड़ा हुआ? तो पृथ्वी से बड़ा जल, जल से बड़े मुनि, और मुनि से बड़ा आकाश। भगवान आप ठीक कहते हैं, आकाश बड़ा है। बोले मैंने एक वामन अवतार लिया था और अपने दो पगों में त्रिलोकी नाप दी थी, आकाश भी नप गया था। तो वामन अवतार के रूप में मैं बड़ा हुआ कि आकाश बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? भगवान बड़े हो गए ना। तो कितने लोगों ने कहा कि भगवान बड़े हैं, दोबारा फैसला करें, बाकी अभी भी नहीं मान रहे, अभी कहीं कंफ्यूजन है क्या? अभी कहीं कंफ्यूजन है? अब ध्यान पूर्वक सुनते नहीं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं नारद जी से, ये बताओ कि अब ये फैसला हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, अब कोई कंफ्यूजन है, कोई संशय है, कोई संदेह कुछ? नारद जी कहते हैं नहीं भगवान, कोई संदेह नहीं है, आप सुप्रीम हो, तो सुप्रीम पर्सनालिटी, आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब भगवान विष्णु फिर कहते हैं नारद जी एक बात बताओ, उस भक्त के बारे में क्या कहोगे जो अपने हृदय में मुझे कैद कर लेता है? जो भक्त अपने हृदय में मुझे बंदी बना लेता है, उस भक्त के बारे में क्या कहोगे? मैं जिसका बंदी हो गया, जिसकी कैद में मैं आ गया, जिसका मैं बंधन में आ गया, वो भक्त बड़ा है कि मैं बड़ा? कौन बड़ा है? अब फिर नारद जी होश में, क्या हो रहा है, ये तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन होने जा रहा है कि कौन बड़ा है, भक्त बड़ा है या भगवान? इसीलिए बहुत सारी कविताएं बनी, बहुत सारे भजन बने, बहुत सारी चीजें बनी कि भक्त के मान के लिए, भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान अपने नियम भी बदल देते हैं। नियम बदल देते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते? तो यहां पर चर्चा आ रही है कि भगवान जो है वो भक्त की प्रशंसा कर, भक्त की तारीफ हो रही है। करंट सिनेरियो में जो आज का युग चल रहा है, जो आज का समय चल रहा है, उसमें भगवान ने भक्त की प्रशंसा करी है क्या? बताइए। सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग में जोर दीजिए, कहीं करिए, किसकी करी है? किसकी करी है? अब मैंने पूछा है तो करी जरूर होगी। ये तो हां कह दी, हां जी करी है, किसकी करी है? चैतन्य महाप्रभु बारंबार हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं? गले लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कहीं कमी करी उन्होंने? तो भगवान जो है अपने अपने आचरण से, अपने अपने सिस्टम से भक्तों की प्रशंसा भी करते हैं और भक्त के मान को कभी नीचे भी नहीं गिरने देते। उसका कारण क्या है सोचिए, कारण क्या है कि भगवान को अपने भक्तों का मान अपने से ज्यादा प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मैं अपना वायदा करके नियम बदल सकता हूं, परंतु अगर कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट मेरे भक्त ने कर दी है तो मेरे लिए उसके मान को सम्मान देना अति आवश्यक है। तो मैं नियम उस समय भक्त के लिए बदलता हूं, अपने लिए नहीं। बहुत सारी कथाएं आती हैं, बहुत सारी चर्चाएं आती हैं, भक्त के मान की रक्षा करने के लिए भगवान कैसे कार्य करते हैं। राम अवतार हुआ, सुग्रीव प्रताड़ित है, दुखी है। किसने दुख दिया है? वाली ने। युद्ध करना चाहता है, युद्ध में जीतना भी चाहता है, परंतु जीत नहीं पाता। कारण? कारण क्या है? कुछ कारण है। बाली के समक्ष जो भी युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी, तो बाली की शक्ति हो जाएगी 1.5 डेढ़ गुना, और उसकी रह जाएगी आधी, तो ऑटोमेटिकली हार तो निश्चित है। भगवान ने अपने मित्र, जिसको मित्र माना है, सुग्रीव, कमिटमेंट किया कि तेरा राज्य तुझे वापस मिलेगा, मैं तेरी तरफ से युद्ध करूंगा। तो फिर भगवान वाली का वध छुपके क्यों करते हैं? डर गए कि आधी शक्ति जो है वाली पे चली जाएंगी, मेरी शक्ति तो आधी रह जाएगी, तो वाली मुझे भी हरा देगा। रावण जिसने कि समस्त देवताओं पे विजय प्राप्त करी है, वाली ने उसको अपनी कुक्षी में दबा के घुमा दिया। इतना पावरफुल है रावण, उसने कोख में फटक रहा है, तड़प रहा है, छोड़ो भैया छोड़ो, नहीं। कारण यह है कि भगवान की शक्ति कभी आधी होती नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान की शक्ति कभी आधी होती नहीं। अगर शक्ति आदि नहीं होगी तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा की चिंता करते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय चाय, नमो ब्राह्मण न देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चाय, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करते। अब समस्या यह है कि शक्ति आदि हो नहीं सकती, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा पड़ जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो मैं सामने पड़ता ही नहीं, मैं छुप के बाहर चलाता ताकि ब्रह्मा जी के मान की रक्षा हो सके। उनका जो सम्मान व्याप्त है, उनका जो मान है, अमानी ना मानी देना, दूसरे के मान की चिंता करते हैं ना। भगवान उदाहरण से बताते हैं, भगवान तो एग्जाम्पल से बताते हैं, एग्जाम्पल से कि दूसरे के मान की चिंता करनी है। सत्रहवीं बार जरासंध जब हार गया है तो आक्रमण करने के लिए 11,000 ब्राह्मणों को पाटलिपुत्र में, आज का पटना जो, 11,000 ब्राह्मणों को बिठा के आया है कि आपने प्रार्थना करनी है, मंत्र जप करना है, मेरी विजय के लिए प्रार्थना करनी है, सुनिश्चित करना है कि मैं विजय प्राप्त करूं। मैं उस वाले कृष्ण से हारना नहीं चाहता जो मथुराधिपति है आज की तारीख में। छोटा सा बालक जो है मुझे हरा देता है। मेरी दो पुत्रियों आस्ती और प्रार्थी को उसने विधवा बना दिया कंस का वध करके। मैं नहीं चाहता कि वो सरवाइव करे, इसलिए मुझे उसको मृत्यु को प्राप्त कराना ही है। क्या बुद्धि है, भगवान को मारना चाहता है, भगवान को मृत्यु प्राप्त कराना चाहता है। ऐसे ऐसे असुर दुनिया है, असुरों का भाव देखिए क्या। भगवान कहते हैं कि जो 11,000 ब्राह्मण वहां बैठे हैं किसकी आराधना कर रहे हैं, मेरी तो आराधना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, प्रार्थना किससे कर रहे हैं, प्रेयर्स किसको कर रहे हैं, मुझे ही तो कर रहे हैं। और अगर जो है वो प्रेयर जो है नहीं हुई पूरी तो उनके सर काट दिए जाए। वो मेरे भक्त हैं, लॉ ब्राह्मण हिताय शायद, वो मेरे भक्त हैं तो मुझे उनकी रक्षा करनी। तो भगवान ने क्या किया, रंग छोड़ रहा है, मथुरा को त्याग दिया, मथुरा से पलायन कर गए कि युद्ध होगा तो जरासंध को हारना ही है, हारे बगैर कुछ चारा है नहीं। परंतु अगर वो हार जाता है तो 11,000 ब्राह्मणों का वध हो जाएगा जो कि मेरे भक्त हैं। तो भक्त के मान की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो है मथुरा से पलायन कर दिया, छोड़ दिया। वो भगवान जो है यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं। अब चर्चा आ रही है श्री वत्स चिन्ह की। तो श्री वत्स चिन्ह क्या है, भगवान के पास कुछ चिन्ह है। वैदुर्यवाणी है कि नहीं, वैजंती माला है, पीताम्बर वस्त्र है, कौस्तु मणि है और श्री वत्स चिन्ह। चैतन्य चरितामृत में अंत लीला 7वें अध्याय में उल्लेख आता है, लक्ष्मी जी पूर्ण ज्ञानमयी है। कौन है लक्ष्मी जी, हु इज लक्ष्मी? नारद पांचरात्र में उल्लेख आता है कि भगवान कृष्ण के वाम अंग से राधा जी प्रकट हुई और उनके वाम अंग से लक्ष्मी जी का प्रकट। वही लक्ष्मी जी जो है द्वारका लीला में रुक्मिणी जी हैं। भगवान के ऐश्वर्यमय रूप की अर्धांगिनी है वो। द्वारका का जो भगवान का स्वरूप है वो ऐश्वर्य का है कि माधुर्य का है? तो वहां पर जो साथिन है वो ऐश्वर्यमय रूप की है कि माधुर्यमय रूप की है? उन्हें कृष्ण का संग तो मिला है, संग तो है, और संग जो है गोपियों की तरह का नहीं है। गोपियों की तरह है नहीं, गोपियों की तरह जो संग मिला है वो सिर्फ वृंदावन में ही मिला है और कहीं नहीं। गोपियां कौन है ये अलग चर्चा है। गोपी शब्द का अर्थ क्या होता है, गोपी शब्द का अर्थ क्या होता है? गोपी शब्द का ओरिजिन जो है, जो मूल है वो है गुप्त। गुप्त धातु से बना है, गुप्त का अर्थ है गुप्त। जो भगवान कृष्ण की माधुर्यमय लीला को गुप्त रखती है, गुप्त रूप से करने में सहयोग करती है, वो गोपी कहलाती है। जब गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो उसके अंदर गोपियों के बारे में बड़ा उल्लेख आता है। वेदों की ऋचाएं गोपियों के रूप में प्रकट हुई, ऋषि मुनि गोपी के रूप में प्रकट हुए, भील कन्याएं गोपी के रूप में प्रकट हुई, जनकपुर की कन्याएं गोपी के रूप में प्रकट हुई, कौशल धाम की कन्याएं गोपी के रूप में प्रकट हुई, वृक्ष और लताएं गोपी के रूप में प्रकट हुई, मतलब बहुत सारी मछलियां मत्स्य अवतार के अंदर गोपी के रूप में प्रकट हुई। तो गोपियों का जो प्रकट है वो बहुत वैरायटी है, बहुत जगह से आ रही है। रास लीला में श्री कृष्ण की बाहें गोपियों के गर्दन को घेरे रहती है। ये सुख जो है उस मूड में, उस मूड में, वो जो मूड है, ये सुख जो है लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं था, ना ही बैकुंठ लोगों की अलग 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 स्त्रियों को। स्वर्गिक सुंदरता है उनमें, परंतु ये सुख जो है उनको प्राप्त नहीं। अब भगवान कृष्ण जो है लक्ष्मी जी से बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी एग्री नहीं होते, रिफ्यूज कर देते, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। रुक्मिणी जी परेशान है, हम संग रहती हैं, सेवा करती हैं, पति का धर्म निभाती हैं, परंतु कृष्ण जो है नींद में भी राधे राधे गोपी गोपी करते रहते हैं, निद्रा में। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की सुंदरता से आकृष्ट है। भगवान कृष्ण जैसा कोई सुंदर है क्या? कोई है? एनीवन? देवताओं में सबसे सुंदर कौन है? देवताओं में कामदेव, कामदेव का दूसरा नाम क्या है? मदन। कृष्ण कौन है? मदन मोहन। और राधा जी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहिनी नहीं, मदन मोहन मोहिनी। उस राधा जी के वाम अंग से लक्ष्मी प्रकट हुई, उन लक्ष्मियों से फिर अनेक लक्ष्मियां आ रही हैं, सिंधु लक्ष्मी आ रही है, सुर लक्ष्मी आ रही है, ब्रह्मा जी की लक्ष्मी है, सब लक्ष्मियों ने अलग अलग नाम धारण करके अलग अलग जो है लीलाएं करी। वो रुक्मिणी जी जो है कृष्ण की सुंदरता से आकृष्ट है, सब प्रकार से उनके संग रहती हैं, सेवा करती हैं, पत्नी का धर्म निभाती हैं, प्रत्येक कार्य करती हैं, परंतु मन में एक फांस है। फांस क्या है? कि संग रहने के बावजूद हमें वो सुख प्राप्त नहीं है। कौन सा सुख? जो कि गोपियों को प्राप्त था, जो उनको प्राप्त है वो सुख हमको प्राप्त नहीं। टेंशन है। अब भगवान को प्रसन्न कर दिया जाए अगर, तो शायद मेरी बात मान जाए। भाई अगर आपका कोई जानकार, आपका मित्र, आपका जो प्रिय है आपको अपने कार्यकलाप से प्रसन्न कर देता है, तो आप कहते हो अच्छा भाई कहो क्या चाहते हो, दूसरे शब्दों में वर मांगो, ऐसा ही होता है ना। तो वो कहने हैं कि मैं जो है किस तरह से भगवान को प्रसन्न करूं, तो सबसे आसान तरीका जो है वो आता है तपस्या। तपस्या का अर्थ है कठिनाई पूर्ण स्थिति में रहकर लक्ष्य को प्राप्त करना। तप कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर रहकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो तपस्या कहलाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करना है आपको। कितने लोग करना चाहते हैं? कठिनाई पूर्ण स्थिति क्या है, प्रोग्रेस करने प्रतिकूल परिस्थिति क्या है, प्रतिकूल क्या है, प्रतिकूल है सांसारिक भोगों का आकर्षण। तो वो जी दुनिया छूट जाएगी चाहे नहीं छूटेगी, बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है। सब कुछ कर सकता हूं परंतु प्याज छोड़ना बड़ा मुश्किल है, उसके बिना तो खाना बनता ही नहीं ना। अब आप एक प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हो, बड़ा डिफिकल्ट है, परंतु तपस्या करते हो कि नहीं करते हो, छोड़ने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो, और फिर छोड़ भी देते हो। तो प्रतिकूल परिस्थिति में रह के जो है रुक्मिणी जी जो है वो तप कर रही है कि मुझे किसी तरह से गोपियों की तरह रासलीला में प्रवेश मिल जाए। आई मस्ट गेट इट। भगवान ने कहा वर तो दूंगा परंतु ये नहीं दूंगा। ये तो तभी पॉसिबल है जब तुम गोपी गर्भ से जन्म लो, तुम ऐश्वर्य छोड़ नहीं सकती, माधुर्य स्वीकार कर नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए रासलीला में प्रवेश पाना असंभव है, नॉट पॉसिबल, सॉरी नॉट डन। अब लक्ष्मी जी परेशान है, रुक्मिणी जी परेशान है, तपस्या करी प्रसन्न भी हो गए, मन मांगा पर नहीं मिलना। भगवान कहते हैं दूंगा तो वही जो मैं चाहता हूं, तुम्हारा चाहने से कुछ नहीं होता, मैं चाहूं तो पल भर में त्रिलोकी का राज्य दे दू, मैं पल भर में त्रिलोकी का राज्य दे दू, परंतु तुम चाहो कि तुम रास में प्रवेश पा जाओ, ये संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपके अंग संग विराजमान रहना चाहती हूं, हर क्षण आपके अंग संग। अंग संग का मतलब क्या है कि आपके कॉन्टैक्ट में, अंगों के संग, मैं हर क्षण आपके अंगों के संग रहना चाहती हूं, ऐसा कुछ इंतजाम करिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम मेरी चेस्ट पे एक सुनहरी रेखा जो कि बालों के गुच्छे से बन रही है, बालों का गुच्छा है, उस गुच्छे से एक रेखा का समान रूप लेके मेरी छाती पे हमेशा विराजमान रहोगी, जिसको कि श्री वत्स चिन्ह के रूप में पुकारा जाएगा। वैष्णव तोषणी के अंदर उल्लेख आता है, श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंध के 13वें अध्याय में भी उल्लेख आता है, ए कर्ल ऑफ येलो हेयर, सुनहरी बालों के रेखा के रूप में। लाइन नहीं है कि लाल पेन लेके नीला पेन लेके सुनहरी पेन लेके लाइन लगा दी गई, रेखा किसकी है ये आज उस जमाने में नहीं कि मोर का पंख लिया रेखा लगा दी भगवान ने छाती में, अरे चलो रेखा के रूप में विराजमान हो गई। वो रेखा बनी किसकी है, रेखा बनी है सुनहरी बालों के गुच्छे के रूप में, एंड इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ। उस वत्स चिन्ह को छूने का जिसको सौभाग्य प्राप्त हो गया, देखते हैं ना विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर, उसको सौभाग्य प्राप्त हो गया, ऐसा बहुत ही रेयर है। ऐसी एक रियलिटी करंट सिनेरियो में भी आज भी है, साथ रहने की नहीं है परंतु छूने की हम बात कर रहे हैं। शिवजी को तो छूने का सौभाग्य मिला ना श्री वत्स चिन्ह को, या श्री वत्स चिन्ह को छूने का सौभाग्य तो नहीं है परंतु एक डीटी भारतवर्ष में ऐसी है जहां पर आपको चांस मिलता है कि आप अपने माथे को भगवान के चरणों से छुआ सकते हैं। हम आल्टर में नहीं जा सकते, आप या आल्टर में नहीं जाना, परंतु उस डीटी के अंदर आपका माथा भगवान के चरणों को छूता है और माथे को छू छू के अगर आप चरण देखेंगे तो चरण के जो ऊपर का हिस्सा है नाखून और उंगलियां वो खिस गई। कौन सी डीटी है भगवान की? पंडरपुर, पंडरीनाथ दर्शन कर लिए जाते हैं। जब आप क्यू में जाते हैं तो आगे डंडा लगा हुआ है मोटा सा, और डंडे के ऊपर जब आप डंडे से आगे पुजारी आपका सर जो है भगवान के चरणों में लगा देते हैं। समथिंग वेरी रेयर, ऐसा होता नहीं कि आपको आल्टर के अंदर आप नहीं जा रहे हैं, नॉट इनसाइड द आल्टर, आल्टर के बाहर है, परंतु मैनेजमेंट ऐसा है, इंतजाम ऐसा है, ड्यूटी का संरचना ऐसी हुई है, आल्टर की संरचना ऐसी हुई है कि आप जो है एक गोल डंडा है लकड़ी का, उसके ऊपर छत पेट आ जाता है और सर जब आपका आगे झुकता है तो भगवान के चरणों को टच करता है माथा, और आप देखेंगे कि चरण जो है औले औले टच करता है, हजारों साल से छुए जा रहे हैं तो वो घिस गए। ये है विठ्ठल लाल जी की खासियत, विठोबा भी कहते हैं, विठ्ठल लाल जी भी कहते हैं। और विठ्ठल लाल जी क्यों कहते हैं? विठ्ठल विठ शब्द जो है मराठी में ईंट के लिए इस्तेमाल होता है, भगवान ईंट पे खड़े हुए हैं इस तरीके से अपने भक्त पुंडरीक के कहने पर। तो गलत कथा है आज नहीं फिर। हरे कृष्णा, श्री भोपाल की बताई गौ मेहमान देव।